समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में मैं प्राची प्रिया और मेरे सहयोगी प्रस्तुतकर्ता वीसी प्रमोद आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हर दिन ठीक 4:30 बजे मिलते हैं हम और आप करने परिक्रमा पूरे देश की। जान पाते हैं हमारे आसपास होने वाली तमाम घटनाओं के बारे में और एक नजर डालते हैं खेल की दुनिया पर भी। खेल की दुनिया में इन दिनों हमारी चांदी चांदी है और इस बात पर पूरा भारत गौरवान्वित है। खेल की दुनिया की नवीनतम जानकारियों के साथ साथ हम ले चलेंगे आपको उन हस्तियों की याद में जो किसी न किसी रूप से आज के दिन से और हमसे बल्कि आपसे भी जुड़े हुए हैं। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी कार्यक्रम परिक्रमा को आगे बढ़ाने की।
हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स एंड गुड आफ्टरनून टू यू आल्सो प्राची।
थैंक यू।
यू आर ट्यून्ड इनटू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम गोल्ड एंड एज प्राची राइटली सेड वी हैव फॉर यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, बट वी मस्ट बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सेज इंडिया हैज बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वेरी सून।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लोकसभा को बताया रूसी सेना में भर्ती किए गए 91 भारतीय नागरिकों में से 14 को छुट्टी दे दी गई है।
बीजेपी एमपी सबमिट मेमोरेंडम टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन ऑन क्रीमी लेयर फॉर एसटी एंड एससी।
सर्वोच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दी।
एंड इन द पेरिस ओलंपिक्स अमन सहरावत टू फेस डैरियन क्रूज ऑफ प्यूर्टो रिको इन द मेंस 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग फॉर द ब्रॉन्ज मेडल। And now, time for our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we'll talk about the International Day of the World's Indigenous Peoples. International Day of the World's Indigenous Peoples takes place annually on the 9th of August to celebrate Indigenous peoples and their knowledge. The day highlights the rights of Indigenous peoples to make their own decisions and carry them out in ways that are meaningful and culturally appropriate to them. Around 200 groups of Indigenous peoples are currently living in voluntary isolation and initial contact. They reside in remote areas rich in natural resources in Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Papua New Guinea, Peru and Venezuela. Prachi, do you know the indigenous tribes of India? कुछ आइडिया है?
मैं तो नहीं जानती इतना इस बारे में।
मैं बता दूं?
जी जरूर।
इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड्स है।
हाँ है।
हाँ, वहाँ पे एक जारवा ट्राइब्स है।
हाँ है।
They are indigenous peoples.
Okay.
And they are very particular about their privacy. So if you try to get anywhere near them, they will shoot you with arrows, जिसमें poison होता है।
मगर ऐसा क्यों होता होगा?
Because they want to preserve their culture.
वो
नहीं चाहते कि प्राची या प्रमोद जाके वहाँ पे मोबाइल फोन में बात करें। They want to preserve their culture and they don't want any of us to go anywhere near them.
तो इसीलिए शायद हमारे लिए भी ये जरूरी होगा कि जिस तरीके से वो चाहते हैं अपने कल्चर को संरक्षण करना है, संरक्षित रखना, तो हमें भी उनकी, जैसे हम अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं, उनकी भी प्राइवेसी का हम उतना ही ख्याल रखें।
Absolutely. They choose to live detached from the rest of the world and their mobility pattern allows them to engage in gathering and hunting, thereby preserving their cultures and languages. The day was first commemorated by the General Assembly of the United Nations, UN, in 1994, with August 9th marking the first meeting of the UN Working Group on Indigenous Populations of the Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights in 1982. The day serves as a reminder to preserve and celebrate the rich culture, heritage, traditions, languages and wisdoms that Indigenous people bring to the world, as well as it is an opportunity to foster solidarity among Indigenous people and raise awareness for the violations of Indigenous rights. Prachi, on the violations, I want to tell you a small story. Last year, there was a guy from America who tried to go to the Andaman Nicobar Islands, jahan pe main bata raha tha na, ko Jarawa tribes
hai, achha.
And he was killed.
Okay.
So that's the violation of indigenous rights.
So हमें नहीं जाना चाहिए ना उनकी जगह पर जहाँ पर उन्हें लगता है कि हमें खतरा है, तो हमें उस तरीके की कोई चीज महसूस नहीं करवानी चाहिए जिससे कि उन पर कोई भी खतरा मंडराए।
Absolutely.
जी, तो जैसा कि आपने बताया प्रमोद कि प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, तो मैं कुछ इसके उद्देश्यों के बारे में बता देती हूँ। इसका उद्देश्य है दुनिया की देशज लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना, तथा उन योगदानों को स्वीकार करना है जो देशज लोग वैश्विक मुद्दों जैसे पर्यावरण संरक्षण हेतु करते आ रहे हैं। हर साल संयुक्त राष्ट्र दुनिया के आदिवासी लोगों से संबंधित एक विशेष मुद्दे को उजागर करने के लिए एक विषय का चयन करता है। बता दें आप सभी को भी और आपको भी प्रमोद कि 2024 अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का विषय स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा है।
Indigenous people are distinct social and cultural groups that share collective ancestral ties to the lands and natural resources where they live, occupy, or from which they have been displaced. The land and natural resources on which they depend are inextricably linked to their identities, cultures, livelihoods, as well as their physical and spiritual well-being. They often subscribe to their customary leaders and organizations for representation that are distinct or separate from those of the mainstream society or culture. In fact, when I was telling you the story, what they did was what the American guys, they flew a drone over that area just to see how they live. And they have got some very interesting footage, which is there on Nat Geo, which you should watch.
Wow.
There are estimated 476 million indigenous peoples in the world living across 90 countries. They make up less than 6% of the world's population, but account for at least 15% of the poorest. They speak an overwhelmingly majority of the world's estimated 7,000 languages and represent 5,000 different cultures.
Kitni khubsurat baat hai. Kitni khubsurat baat hai.
Indigenous peoples have rich and ancient cultures and view their social, economic, environmental, and spiritual systems as interdependent. They make valuable contributions to the world's heritage thanks to their traditional knowledge and their understanding of the ecosystem management.
बिल्कुल, और अगर हम ये तो हमने विश्व ट्राइब की बात की ना, अगर हम भारत के परिपेक्ष में बात करें तो स्वदेशी लोगों की सबसे बड़ी आबादी उत्तर पूर्व भारत के 7 राज्यों और राजस्थान से पश्चिम बंगाल तक आते आते जब आप देखेंगे वहां तक फैली हुई है, है ना, तथाकथित जिसे हम केंद्रीय आदिवासी बेल्ट कहते हैं, है ना। तो और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि इसके कुछ महत्व है कि आखिर हम इस दिन को क्यों मनाते हैं।
हाँ,
तो इसलिए मनाते हैं क्योंकि स्वदेशी लोगों के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को हम मजबूत करते हैं। दूसरी चीज, वैश्विक स्तर पर सुने जाने वाले स्वदेशी आवाजों के लिए एक हम मंच भी प्रदान करते हैं, हमें एक मंच मिलता है। स्वदेशी चिंताओं के बारे में सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और जनता के बीच जागरूकता भी बढ़ाई जाती है और स्वदेशी समुदायों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों की समझ को भी बढ़ावा देना होता है।
That's right. Different occasions are coordinated on this day in various parts of India to display the social legacy of the Adivasi groups. It is likewise a day to bring issues to light about the difficulties faced by indigenous groups, including issues connected with land rights and cultural preservation. Adivasi Divas recognizes the significant contributions of indigenous peoples to society, especially in regions like sustainable living, environmental conservation, and biodiversity. The day is marked worldwide through various events and initiatives. Events and activities on this day often include cultural exhibitions, educational workshops, and public speeches that underscore the importance of indigenous knowledge and heritage.
बिल्कुल, और आदिवासी समुदाय स्वदेशी आबादी वाले भारतीय क्षेत्रों में समुदाय के लिए भोजन और अन्य गतिविधियों की मेजबानी करके अपनी विरासत का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये वार्षिक उत्सव समुदायों को उन नीतियों की के बारे में बताता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है जो उनकी प्रगति कल्याण का समर्थन करती हैं और उन व्यक्तियों को उनके अधिकारों के बारे में भी शिक्षित करती हैं। और अब समय आ गया है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
That's right. I'll take you to Gujarat. The land famed for its Asiatic lions is about to become an even more exciting destination for wildlife lovers. The Central Zoo Authority has just given the green light for 3 new safari parks across the state. We have a report.
Imagine spotting the majestic Asiatic lions not just in Gir but also in Kutch, Una and Kevadia. The new parks will be set up at Koteshwar in Kutch, Nalia Mandvi near Una and in Kevadia. In addition to the safari parks, Gujarat will also welcome its first cheetah breeding center in Kutch. In an exclusive talk with Akashwani, Principal Chief Conservator of Forest, Nityanand Srivastav said, this is a part of Gujarat's ongoing effort to support and expand its lion population, which has been increasing steadily thanks to the successful conservation efforts.
भारत सरकार में जो CZA अथॉरिटी है सेंट्रल जू अथॉरिटी उन लोगों ने गुजरात में तीन जगह पे सफारी बनाने का अप्रूवल दिया है. ये तीन जगह है, एक नारायण सरोवर है कोटेश्वर में, दूसरा केवड़िया है और तीसरा नलिया मांडवी आपके ऊना के. ये भारत सरकार ने चीता ब्रीडिंग कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर अप्रूव किया है और ये गुजरात के लिए एक बहुत खुशी की बात है, कारण कि वर्षों पहले गुजरात में चीता हुआ करता था और जो कच्छ की बन्नी ग्रासलैंड है वो चीता के लिए बहुत ही अनुकूल जगह है. तो इसमें हम लोगों ने कामगिरी तो वहां पे जो एनक्लोजर बनाने हैं या और भी पानी की सुविधा, वेटनरी की सुविधा, कुछ रोड रास्ते भी बनाने पड़ेंगे, वो सारे कामगिरी शुरू हो गई है. गुजरात के जो अलग अलग विस्तार में अलग अलग रीजन में जो सफारी पार्क बन रही है उसे एक टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. अलग अलग रीजन में होने से लोग आसानी से विजिट भी कर सकते हैं.
द न्यू सफारी पार्क्स विल नॉट ओनली बूस्ट वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एंड क्रिएट लोकल जॉब्स बट ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट role in spreading awareness about wildlife conservation and engaging the community. With Durgesh Mehta from Gandhinagar, for Parikrama, this is Aparna Khun, Akashwani News, Ahmedabad.
और अब गुजरात के सफारी पार्क से सीधा आपको ले आएंगे हम राजधानी के भारत मंडपम में. राजधानी के भारत मंडपम में चल रहा है 28वां दिल्ली पुस्तक मेला. बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमियों को अपने ओर आकर्षित कर रहा है. 5 दिनों तक चलने वाले पुस्तक मेले का विषय भारतीय पुस्तकों का वैश्विक प्रभाव है. पुस्तक मेले का आयोजन इस बार बच्चों और युवाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है. पेश है हमारे संवाददाता से उनकी एक रिपोर्ट.
भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ITPO द्वारा आयोजित दिल्ली पुस्तक मेले में इस बार 50 से अधिक प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 80 से अधिक स्टॉल लगाई गई हैं. मेले में पुस्तकों, पत्रिकाओं, शिक्षण सामग्री के साथ साथ उपहारों की भी एक विशाल श्रृंखला उपलब्ध है. मेले में कई राज्यों से पुस्तक प्रेमी, लेखक और प्रकाशक पहुंच रहे हैं. पुस्तक मेले में आगंतुकों के लिए विशेष तौर पर रीडर कॉर्नर भी बनाया गया है, जहां वे आराम से अपनी पुस्तक पढ़ सकते हैं. मेले में फूड कोर्ट भी बनाया गया है, जहां लोग देश विदेश के व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं. इस बार मेले में स्टेशनरी और कॉर्पोरेट गिफ्ट कॉर्नर भी आकर्षण का केंद्र है. पुस्तक मेले में ग्रेटर नोएडा के एक विद्यालय से छात्रों के साथ आई शिक्षिका ने आकाशवाणी से बातचीत में इसे एक अच्छा अनुभव बताया.
मैं श्वेता, कैम्ब्रिज स्कूल, ग्रेटर नोएडा से बात कर रही हूँ. एग्जीबिशन बहुत ही अच्छी है, बच्चों के लिए बहुत एक्साइटमेंट था, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया. स्टेशनरी और जो बाकी एसेसरीज का कलेक्शन है, नो डाउट बहुत ही बढ़िया था. स्टोरी बुक्स का कलेक्शन अमेजिंग है, बच्चों को बहुत रीजनेबल प्राइस में बुक्स मिल पाई, सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव.
पुस्तक मेले में पहुंची नोवेल प्रेमी मुस्कान ने बताया कि वह हर साल पुस्तक मेले में आती हैं.
यहाँ पे हर साल इतना अलग, इतनी अच्छी कलेक्शंस होती है. इस साल तो बहुत ज्यादा ही लोग हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ यहाँ पे आके. वैसे तो बहुत सारी बुक्स खरीद लेती हूँ, बट फिलहाल मैं डायरीज देख रही थी. यहाँ पे इतनी सुंदर डायरीज डूडलिंग के लिए या बुक मार्क्स, यहाँ की कलेक्शन बहुत अच्छी है.
साहित्य प्रेमी चंद्रकांत शुक्ला अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेले में पहुंचे. उन्होंने कहा कि मेले में पुस्तकों का संग्रह बहुत अच्छा है और वह अपने पसंदीदा साहित्यकार की पुस्तक ढूंढ रहे हैं.
मतलब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और जैसे बुक्स को प्रमोट करने के लिए और उनकी वैल्यूज बताने के लिए एक बहुत अच्छा मतलब प्लान है ये बुक फेयर के लिए. और क्योंकि जैसे आज का कल्चर हो गया है फोन का, कोई भी बच्चा साहित्य नहीं पढ़ना चाहता, हम अपनी वैल्यूज भूल गए हैं. स्कूल खाली टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा है ऐसी बुक्स जो कि काम तो लाइफ में आएंगी बट वो वैल्यूज अभी हमें नहीं दे पा रही. सो फिक्शनल बुक, नॉन फिक्शनल बुक जो बच्चों को पढ़नी चाहिए या फिर जो एक अच्छा विजन दे सकती है, और उसके लिए फेयर बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी, बिल्कुल सबको आना चाहिए यहाँ पे एक बार. जैसे मेरे फेवरेट ऑथर मुंशी प्रेमचंद हैं, मैं अभी उनकी एक बुक ढूंढ रहा हूँ गोदान, और उनकी एक और बुक मुझे पढ़नी है कफन.
दिल्ली पुस्तक मेला रविवार तक जारी रहेगा, जिसमें पुस्तक प्रेमी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक मेले में निःशुल्क प्रवेश कर सकते हैं. दिल्ली से परिक्रमा के लिए अभिषेक कपिल.
Department of Industries and Commerce, Government of Nagaland has signed a Memorandum of Understanding MOU with Open Network for Digital Commerce, ONDC, at Kohima recently. The MOU is to collaborate in facilitating digital sales for small businesses, farmers, artisans and entrepreneurs through the ONDC platform and enhance their digital inclusion.
The Memorandum of Understanding was signed by Chief Business Officer, Delhi, Sri Rish Joshi, and Director, Industries and Commerce, Government of Nagaland, P. Tukuga Sima, on August 6. These collaborative efforts between the Department of Industries and Commerce and Open Network for Digital Commerce will also aim to empower and enable these diverse business entities by leveraging digital solutions and fostering sustainable growth. Open Network for Digital Commerce is a flagship initiative of the Department for Promotion of Industries and Internal Trade under the Ministry of Commerce and Industries to democratize e-commerce in India. In Nagaland, the Department of Industries and Commerce is the nodal department for promoting and advancing the successful implementations of ONDC initiative within the state. For further expansion and widespread participation, the Government of Nagaland has empaneled Idlanblu Services Private Limited, a Nagaland-based e-commerce brand, to work as a nodal agency to bring in all the local artisans, FPOs, entrepreneurs, among others, under its umbrella and help in their own onboarding process into the ONDC network. For Parikrama, this is Asunyo from Kohima.
And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
The 9th of August is the birth anniversary of freedom fighter Sayyed Ahmadullah Qadri, who was born in 1909 in Hyderabad. Hailing from the house of Shamsullah Qadri, who was a famous writer, Sayyed was introduced to the literary circles at quite an early age.
Sayyed Ahmadullah Qadri founded the famous newspaper Sultanat. Apart from that, he also wrote for two other newspapers called Paisa Akhbar and Tariq Publications. In 1946, Qadri was the first journalist of Hyderabad state to write in favor of one nation theory in Urdu News Daily Sultanat. He decided to join politics and became a member of the Andhra Pradesh State Legislative Council and chairman of the Andhra Pradesh State Hajj Committee.
Holding numerous pivotal positions throughout his life, Qadri decided to enter into the field of education. Appointed as the president of Lutfullah Oriental Research Institute, he made sure to contribute richly to the life of his students. Sayyed Ahmadullah Qadri was awarded the Padma Shri by the Government of India in 1966. The noble soul breathed his last on the 5th of October, 1985. We salute the great nationalist.
O amar desher mati tomar pore thekai matha.
9th of August is the death anniversary of Trailokyanath Chakraborty. He was born in 1889 at Moymansingh in present-day Bangladesh. He joined the freedom struggle in 1906 as a boy of 7 years of age and became member of the Dhaka Anushilan Samiti. He was first arrested for his revolutionary activities in 1908, as a result of which he could not finish his education.
He was arrested again in Calcutta in 1914 due to his active participation in revolutionary activities and was sent to Andaman for the Borishal case. Trailokyanath came back to Kolkata on the expiry of his sentence. There, he took charge of the national school. He was arrested again in 1927 and was sent to a prison in Burma, where he remained for 1 year.
After being released from the jail, he joined the Hindustan Republican Army. He participated in the Lahore Congress session of 1929. He was in jail again for 8 years, from 1930 to 1938. After his release, he participated in the Quit India movement and was imprisoned in 1942. However, he was released from jail in 1946.
After the creation of East Pakistan, he remained active in politics there. In 1970, he came to Delhi due to health issues. The noble soul breathed his last in Delhi on the 9th of August, 1970.
We remember freedom fighter Kamla Prasad Vishwakarma. He was a resident of Azamgarh, Uttar Pradesh. He took part in the Quit India movement at an age of only 9 years. He received bullet wounds in the police firing, but later he was arrested and sentenced to 6 months of rigorous imprisonment. Kamla Prasad Vishwakarma died in detention on the 9th of August 1942 on account of severe torture by the jail authorities.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar.
Prachi, मुझे लगता है आपको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है. आपने कहा था चांदी चांदी.
बिल्कुल.
At the Paris Olympics 2024, Indian grappler Aman Sehrawat will be eyeing an Olympic podium finish when he takes to the mat in the men's 57 kilogram freestyle wrestling event at the Champs de Mars Arena today. Aman will be looking for India's first Paris 2024 Olympics medal in wrestling when he takes on Darian Cruz of Puerto Rico in the bronze medal match. The match will start at 9:45 p.m. IST. And now we're joined live by our correspondent Shaurya in Paris. Shaurya, how are you doing?
I'm good. And it's a very interesting day today.
Yes.
We have woken up to the news of the silver medal.
Absolutely,
and,
yeah.
And, you know, yesterday I was present at the Stade de France where Neeraj Chopra actually was part of that epic final in the javelin men's event.
Right.
You know, Ashraf Nadeem threw this Olympic record mark of 92.97 and everyone was thinking, how will Neeraj respond to this? And he was brilliant with his response. Actually, if you look at his mark, 89.45, it is his second best throw ever in his career. I was doing some research on this.
That's right.
It's his season's best, of course. Mm-hmm. So he brought the best of his ability out at that very moment when it was required. And he spoke to us after that as well. He's saying, "Bahut josh tha mere mein." Aur wo josh kaam aa gaya actually. And, but he's still not happy. He's still working on his technique. He was saying,
which
I need to work on my injuries, etc. And, you know, that's the mark of a champion. He's not
absolutely
happy.
Sure,
of course, he won the gold. And, he's gonna return stronger. And in Los Angeles and even before in the Worlds, many other tournaments before that. So brilliant performance there, but he's still not happy. He's a champion. And, you know, that gives us our fifth medal. Yesterday, we also won a medal at hockey. A sport with which we have a nostalgic bond. And, you know, any hockey medal stands out because of that. You know, we were so brilliant. We were a legendary team and now hockey is coming back for India. They play total hockey, as they say. Attack and defense balanced together.
Absolutely.
Goalkeeper PR Srijesh also had a brilliant match.
Mm-hmm.
His final match, his farewell match for India. So all in all, it was a very good day yesterday. And, you know, today, things haven't looked up that well in the relay races.
Mm-hmm.
You know, both the teams, they were obviously inspired by Neeraj's 89.45 meter throw to the silver. And there was a lot of hope from the men's team because they hold the Asian record in the 4x400 meter relay. But they didn't perform to that level. They were knocked out. They came fifth in the heat. And the women also finished last. So those two teams haven't made it to the finals. That's how the Olympics goes. It's a very tough competition. This stadium, this
government. That's why it's called the Olympics, Shaurya, Anna.
Of course. And, you know, being standing here in this stadium at Stade de France, the National Stadium of France, the atmosphere is something to feel, you know, it's pulsating all the time. Performing here, most of our athletes, you know, they failed to meet their national records or their personal bests because of the atmosphere, the entire aura of the Olympics. And that's very important. And that's why Neeraj, performing that well.
Yeah.
Even though he hasn't hit the 90 meter mark.
Is absolutely commendable.
He's a true champion.
Absolutely.
He's a true champion. That's what he proved. And under that kind of pressure, you know, India versus Pakistan,
mm-hmm.
that kind of an atmosphere there. I saw him gearing up for that second throw, you know, boosting himself, asking the crowd to boost him. And then he came up with that magic throw.
Awesome,
saying,
awesome.
I struggled. I pulled it out of the bag, basically.
Absolutely.
So five medals, I think that's a decent showing. Six.
Absolutely
fourth place
commendable.
Finishes.
Wonderful. Thank you.
Fourth place finishes. Even if three of them had been bronzes, we could have crossed the seven mark.
Exactly. Thank you so much, Shaurya, for that wonderful update. You've really made our day. And now in business news, Indian benchmark indices, the Sensex and the Nifty, surged over 1%, driven by global market recovery. At close, the Sensex, which tracks 30 companies, was up 820 points or 1.04% at 79,706. Meanwhile, the Nifty 50 gained 250 points or 1.04% to end at 24,367. The broader markets also showed strength, with the mid-cap index soaring 1.21%, while the small-cap index rose by 0.79%. In the global crude market, Brent crude was trading marginally higher at $79.19 per barrel. Meanwhile, WTI crude was also trading up at $76.28 per barrel when reports last came in.
और आज जयंती है, जयंती है, वही चलेंगे आज आपको उन लोगों के याद में जो लोग आज हमसे जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि आज हम मनाने वाले हैं जयंती कुछ खास लोगों की
जी,
तो शुरुआत मैं करूं?
बिल्कुल, लेडीज फर्स्ट।
और आज जयंती है हिंदी के जाने माने गद्य साहित्य लेखक शिवपूजन सहाय की। शिवपूजन सहाय का हिंदी के गद्य साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन तथा बिहार राष्ट्रभाषा परिषद नामक हिंदी की दो प्रसिद्ध संस्थाएं इनकी कीर्ति कथा के अमूल्य स्मारक के रूप में हैं। उनकी भाषा बड़ी ही सहज थी। उन्होंने उर्दू के शब्दों का खूब इस्तेमाल किया है और प्रचलित मुहावरों के जरिए जन रुचि से परिपूर्ण विषयों पर भी बात की है। शिवपूजन सहाय ने कहीं कहीं अलंकार से समृद्ध भाषा का भी उपयोग किया है और गद्य में पद्य जैसा कलेवर लाने की कोशिश की है। सोचिए प्रमोद कि अगर कोई राइटर लिख रहा है और अगर उसकी कोई गद्य भाषा शैली है
जी।
और उसमें अगर पद्य का एक जो कहते हैं ना कि फ्लो आना शुरू हो जाए कि मतलब कि किसी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद अगर आपको पोएम जैसा लगने लग जाए तो वो कितना अपने आप में मतलब कलाकृति से भरा हुआ है।
Absolutely.
भाषा के इस पद्यात्मक स्वरूप के बावजूद शिवपूजन सहाय के गद्य लेखन में घनत्व का कभी अभाव नहीं रहा। उनके गद्य में कई तमाम बातें सार गर्भित हैं। शिवपूजन सहाय की रचनाएं भाष्य कलात्मकता सृजनात्मकता लय गति और लेखन वैशिष्ट शैली से समृद्ध है।
वंडरफुल। टुडे इज द बर्थडे ऑफ सावन कुमार टाक। ही वाज अ फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर एंड लिरिसिस्ट। ही डायरेक्टेड मेनी हिंदी फिल्म्स इंक्लूडिंग सक्सेसफुल फिल्म्स लाइक साजन बिना सुहागन सौतन की बेटी सनम बेवफा बेवफा से वफा एंड ही इज क्रेडिटेड विथ वन थिंग जो आप नहीं जानते होंगे।
क्या
आपने हरिहर जरीवाला का नाम सुना है?
नहीं।
हाँ। अच्छा अब मैं पूछूं आपसे संजीव कुमार का नाम सुना है?
अरे नहीं
नहीं सुना संजीव कुमार का
नहीं।
नाम वो वही है दोनों ही सेम है।
क्या बात कर रहे हैं?
सावन कुमार टाक ने ही
ये तो नई बात हो गई।
सावन कुमार टाक ने ही नाम दिया था हरिहर जरीवाला को संजीव
अच्छा,
कुमार
अच्छा न्यू थिंग टू नो
या एंड ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद गिविंग ब्रेक्स टू एक्टर्स सच एज महमूद जूनियर ऑल्सो and he was the one who gave as I rightly said Sanjeev Kumar the name Sanjeev Kumar and the film received the presidential mention at the national awards. Kis film ki baat kar raha hu main? Sautan. And let's listen to a song from the movie Sautan.
Shayad meri shaadi ka shayad meri shaadi ka
प्राची इस गाने में एक और विशेष बात है।
क्या बात?
दिस मूवी वॉज द फर्स्ट मूवी टू बी सॉन्ग शॉट इन मॉरिशस।
क्या बात
इस गाने का शूटिंग मॉरिशस में जाके देख लीजिए।
क्या बात है? अरे वाह वाह वाह।
टुडे इज ऑल्सो द बर्थडे ऑफ विवेक मुश्रान जिनको आप जानते होंगे इंडियन एक्टर हु प्रेडोमिनेंटली वर्क्स इन हिंदी फिल्म प्रोडक्शंस एंड टेलीविजन प्रोडक्शंस। ही स्टार्टेड हिज करियर इन 1991 विद सुभाष घई की फिल्म सौदागर एंड हीज अपीयर्ड इन मेनी अदर फिल्म्स। ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज रोल इन स्टार प्लस फैंटेसी कॉमेडी सीरीज सोनपरी। We have a song from the movie Saudagar.
और आज हम याद करेंगे हिंदी साहित्य के ज्वाज्वल्यमान इतिहास के नामी गिरामी व्यक्तित्वों में से एक मनोहर श्याम जोशी को। आज उनकी जयंती है। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार उपन्यासकार व्यंगकार पत्रकार दूरदर्शन धारावाहिक लेखक जनवादी विचारक फिल्म पटकथा लेखक उच्च कोटि के संपादक कुशल प्रवक्ता तथा स्तंभ लेखक भी।
क्या प्राची ये वही है क्या जिन्होंने हम लोग लिखा था?
जी
हाँ, ये नहीं बताया आपने।
अपनी कलम की ताकत से वो दूरदर्शन के प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिकों जैसे कि बुनियाद नेताजी कहिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने हम लोग आदि के कारण वे भारत के घर घर में प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने धारावाहिक और फिल्म लेखन से संबंधित पटकथा लेखन नाम की पुस्तक की भी रचना की। साहित्य पत्रकारिता टेलीविजन सिनेमा जैसे अनेक माध्यमों में वो सहजता से लिख देते थे। मतलब कि ऐसा नहीं कि ये लिखेंगे और वो नहीं लिख पाएंगे, सब लिख सकते हैं। तो आज के दिन हम आपका सलाम उन तक पहुंचाते हैं।
Absolutely.
अब क्योंकि समय हो चला है विदा लेने का है ना, तो हम आपसे अनुमति लेते हैं। अनुमति दीजिए मुझे और प्रमोद को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की।
नमस्कार, नमस्कार।